गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्तलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। ये श्लोक रुक्मिणी अपने खत में भगवान कृष्ण को लिखा था। उन्होंने लिखा, इधर नागपुर से 3 घंटे दूर में रुक्मिणी का कौंडिन्यपुर है, स्थान है। तो उन्होंने कृष्ण को ऐसे लिखा उनके कथ में, हे भगवान, मैंने तो अभी तक आपको देखा नहीं हूँ, सिर्फ मैंने महान ऋषि मुनियों के मुखारविंदों से आपके बारे में सुना है। मैंने श्रुत्वा, किसके बारे में सुना? आपके गुणों के बारे में सुना, आपके दिव्य गुणों के बारे में सुना, कैसे आपके अंदर भक्त वात्सल्यता है, भक्त कारुण्यता है, दीन बंधुता है, और आप तो गुणों के समुद्र हो, और आप भुवन सुंदर हो, आप ऐसे एक सुंदर व्यक्ति हो, जब आप मथुरा के अंदर प्रवेश करते हो, सारे मथुरा के जन अपने अपने छत के ऊपर चढ़कर आपके दर्शन को देखने के लिए चढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप द्वारका के नगर में जब आप चलते हो, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारका पुरस्त्रीय, ऐसे बताया है कि द्वारका के पुरस्त्री भी ऊपर खड़े रहकर हर दिन देखते थे कृष्ण को अपने महल में जाते समय। ऐसा बताया है कि हालांकि वो हर दिन देखते थे, फिर भी कभी भी वो थक नहीं जाते थे भगवान की सुंदरता को देखकर। इस तरह भगवान जब अदिति के कुंडल को लौटाने के लिए गए स्वर्गलोक में, तभी भी सब देव देवता इकट्ठा हो गए भगवान की सुंदरता को देखने के लिए। इस तरह बताते हैं, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्तलाभम, आंख वालों को देखने के लिए लायक चीज है आप ही, ऐसे बताती है। जिनके पास आंख है, अगर किसी के पास आंख है वो कृष्ण को देख नहीं पाते हैं, तो आंख सिर्फ एक घाव के बराबर है, कुछ काम का नहीं है। तो आपको देखने इस दुनिया में सारे लोगों के पास, जिनके पास आंख है, आपको देखने के लिए लायक वस्तु आप ही हो, ऐसे बताते हैं। भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतों का, आप मेरे कान के अंदर घुसकर मेरे हृदय में आपने प्रवेश किया, और प्रवेश करके हमारे चित्त में आप बस गए, बस अभी हम आपको हमारे चित्त से निकल नहीं पाते हैं, आप हमेशा के लिए हमारे हृदय में आप बस गए हो, ऐसे बताती है। तो ये रुक्मिणी की कथा से हमें एक बात पता चलता है, अगर हम भगवान को प्राप्त करना है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है भगवान को, सिर्फ सुनने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। हर दिन रुक्मिणी अपने महल में ऐसे ऋषि मुनियों से सुनती थी कृष्ण के बारे में, सुन सुनकर उनके हृदय में ऐसे एक लौल्य जागृत हो गया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण को प्राप्त करके ही बैठेंगे हम, ऐसे उनके अंदर एक दृढ़ता आ गया उनके अंदर। तो ये लालसा जो है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, इस लालसा का आग जो है, इसका एक चिंगारी मात्र है हमारे में, हमारे हृदय में। लेकिन रुक्मिणी, राधा रानी, लक्ष्मिया, इनके हृदय में ये तो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, ऐसे बताया गया है। तो उनके हृदय में तो ऐसे प्रेम का बाढ़ है, प्रेम का समुद्र है, लेकिन हमारे अंदर ऐसे प्रेम का एक चिंगारी मात्र है। लेकिन वो चिंगारी को वर्धन किया जा सकता है, जैसे गांव में कभी कभी ये जो कोयला होता है वो गरम गरम रहता है, उसको गरम रखने के लिए स्त्रियां क्या करती है, कभी उसके ऊपर भस्म डालकर रखती है सुबह, तो शाम के समय उसको भस्म को निकाल कर वापिस वो चूल्हा को इस्तेमाल करती है। अगर कोई भूल से जाकर उसको हाथ डालेगा उधर, उसको लग जाएगा वो ऐसे। तो इस तरह हमारे अंदर भी सुप्त कृष्ण भावनामृत है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, उसको जगाने के लिए ये संस्था श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापन किया है। जैसे गांव में आपने देखा होगा ना, एक लंबा एक ऐसे ये होता है, वैसे हवा डालने से क्या होता है, वो कोयला लाल लाल हो जाता है वापस, है ना। तो हमें शक्ति लगाना चाहिए वो कोयले के ऊपर, भस्मे के ऊपर नहीं, नहीं तो कहीं और करेंगे तो वो बड़ा नहीं होगा, वो उसके ऊपर सीधा करना चाहिए। इस तरह आध्यात्मिक दुनिया आग के बराबर है, भौतिक दुनिया धुआं के बराबर है। धुआं से आंखों में आंसू बहता है, लेकिन आग में हवा डालने से आग बढ़ता है, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिखाया कैसे हम सीधा आध्यात्मिक दुनिया की ओर हम ध्यान दे और हमारे तीव्रता को बढ़ाए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो भक्ति में तीव्रता को बढ़ाने से जिस तरह एक चूल्हे में धुआं निकल ही जाता है, इस तरह हमारे सब तरह के समस्याएं निकल जाएंगे। भौतिक समस्या हो, आध्यात्मिक जीवन में समस्या हो, जो भी समस्या हो, भौतिक दुनिया में तो अनेक समस्या है जैसे महाराज बता रहे थे त्रिविध तापों के बारे में, लेकिन आध्यात्मिक संस्था में आने के बाद भी हमारे अंदर समस्याएं आएंगी। जैसे कभी ईर्ष्या होता है भक्तों के बीच में, कभी स्पर्धा होता है, कभी अलग अलग तरह की समस्याएं होता है, लेकिन वो भी निकल जाएंगे अगर हम भक्ति चिंगारी को बड़ा वर्धन करेंगे। हम जितना वर्धन करेंगे भक्ति भाव बढ़ेगा हमारे हृदय में, इस भौतिक दुनिया के समस्याएं छोटे मोटे हो जाएंगे। जैसे आप सड़क में चलते समय बड़े बड़े मकान दिखाई देते हैं, लेकिन एरोप्लेन में जाते समय मकान सब छोटे छोटे मैच बॉक्स जैसे दिखते हैं। इस तरह समस्या बड़ा होता है जब हम तीन गुणों के अधीनता में हैं। हम तीन गुणों से ऊपर उठेंगे, ये दुनिया के समस्याएं सब छोटे छोटे मैच बॉक्स जैसे दिखेंगे, छोटे हो जाएंगे सब ऐसे। इसलिए हम इस तरह के तीन दिन के आप लोग आए हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में हम आते हैं, भक्त लोग साथ में आते हैं, हम भगवान की भगवत चर्चा करते हैं और हमारे अंदर जो भक्ति की चिंगारी है उसको वर्धन करते हैं, बड़ा करते हैं और उससे हमारे आनंद बढ़ेगा और हमारी समझावट बढ़ेगी भगवान के संबंध में, संबंध जुड़ेगा और अच्छी तरह भगवान के साथ, और इस दुनिया में कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब पता चल जाएगा हमें ऐसे। तो इस तरह हमारे दिव्य चक्षु को खोलने के लिए हम भगवान के भक्तों के संग में हम आते हैं इस तरह। तो हम सर्वप्रथम ये बात जानना चाहिए कि हम प्रचार को शुरू करने के पहले हमें ये बात जानना चाहिए कि हम खुद हमारे पास क्या होना चाहिए। जैसे अगर कोई कंपनी, कोई वॉच कंपनी में काम करता हो तो वो सूटकेस में वॉचेस लेके जाकर वो वितरण करता है, वो बेचता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सामान को बेचता है, है कि नहीं। अगर कोई टिप टॉप कोट सूट टाई सब पहना है, मार्केट में चला गया सूटकेस लेकर, लोग पूछते हैं ठीक है एकदम खूबसूरत है तुम, क्या बेचना है तुमको, खोल कर देखता अंदर वॉच चलाने के लिए भूल गया हो तो सूटकेस खाली है, तो क्या है, कुछ काम का नहीं है, कुछ धंधा नहीं होगा ना। इस तरह भगवान भी बताते हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अर्जुन इस दुनिया में अनेक लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग ज्ञान हासिल करते हैं, कुछ लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, अलग अलग चीज़ लोग करते हैं, लेकिन मैं प्राप्त होता नहीं किसी को भी जब तक उनके पास भक्ति नहीं है। जब भक्ति प्राप्त होता है तभी मैं प्राप्त होता हूँ। जैसे भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः, ऐसे भगवान बताते हैं। जिस तरह उद्धव को भी भगवान बताते हैं कि हे उद्धव न सांख्यम उद्धवा स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर मम ऊर्जिता, ऐसे भगवान बताते हैं कि तपस्या सांख्य योग इस तरह के अलग अलग विविध चीजों से मैं प्राप्त नहीं होता, भक्ति से प्राप्त होता हूँ। लेकिन भक्ति भी ऐसा नहीं है कि ऐसा कठिन चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य बताते हैं, हमें दो लोग चाहिए, गुरु और कृष्ण चाहिए। अभी गुरु से हम श्रवण करते हैं, श्रवण करके उनके दिए हुए विधि विधानों को हम पालन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो धीरे धीरे हम कृष्ण की ओर, जिस तरह यशोदा मैया का कृष्ण के साथ संबंध था, अर्जुन का कृष्ण के साथ संबंध था, प्रेममय संबंध, जिस भक्ति से भगवान अजित कहला जाते हैं वो जीत गए, वो उनको उनको विजय प्राप्त किया इन भक्तों ने, इस तरह हम भी भगवान के भक्ति में जुड़कर हमारे हृदय में ऐसे हृदय पिघल कर भक्ति भाव जागृत हो सकता है, जितना हद तक हम अच्छी तरह भक्ति करते हैं। ये सर्वप्रथम लिखा है मैंने भरत महाराज। तो भरत महाराज जो हैं वो भी राजा जब थे वो जंगल में गए भक्ति को वर्धन करने के लिए, तो एक श्लोक आता है, यो दुस्त्यजान दारसुतान सुहृत राज्यम हृदय स्पृश जहौ युवैव मलवत उत्तम श्लोक लालसः। ऐसे एक श्लोक आता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति मल त्याग करने के लिए जाता है, मल त्याग करने के बाद मुड़कर देखेगा भी नहीं, वो चला ही जाएगा वो। इस तरह उन्होंने अपने राज्य, अपने धर्मपत्नी, बच्चे, परिवार, समाज, अपने खजाना, अपने सैनिक, हाथी घोड़े, सब कुछ छोड़कर वो जंगल में चले गए भक्ति को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको मालूम है भरत महाराज को क्या हुआ जंगल में, क्या हो गया भरत महाराज को, कौन जानते हैं? हम बोलिए मत, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आसक्ति हो गई। हाँ, जैसे एक माता जी पूछ रही थी महाराज जी को अंत में, क्या हमें साधना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम साधना इतना तीव्रता से करें कि हमारे साधना से हम भक्ति में आगे बढ़े, लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं अगर आप साधना करते रहोगे लेकिन सेवा कभी नहीं करोगे तो तुम्हें साक्षात्कार नहीं मिलेगा, सब एकदम थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, हम सेवा करते हैं, सेवा करने से हमें साक्षात्कार मिलेगा, हृदय पिघलेगा, हमें भगवान के लिए पसीना छूटना चाहिए, थोड़ा परिश्रम करें हम भगवान के लिए, यत्न करें। लेकिन कभी कभी हम भगवान के लिए परिश्रम करते करते, यत्न करते करते हम साधना में ढीला पड़ जाते हैं ऐसे। तो जैसे माता ने बताया, अभी भरत महाराज जी जंगल में ऐसे एक छोटे हिरण के बच्चे को लेकर पालन पोषण करने लगे उसके, लेकिन उसमें वो फंस गए, उसमें उस आसक्ति में। कभी कभी इस तरह हम भी इस दुनिया में, हमें ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर कोई गृहस्थी व्यक्ति है, उसके पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, उसके धंधा भी है, सब करना है, ये भौतिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर से गुरु गुरु और वैष्णव जन बोलते हैं कि माला बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, मंदिर में रेगुलर आओ, गंभीर बन जाओ भक्ति में। तो अगर मंदिर में ज़्यादा समय बिताते हैं तो परिवार वाले बोलते हैं कि तुम जिम्मेदारी को निभाते नहीं, अगर घर में ज़्यादा समय बिताते हैं तो मंदिर वाले बोलते हैं अरे माया में पड़ गए तुम, है ना। इस तरह दोनों साइड खींचा खींची होता है भक्तों को, क्या किया जाए। शास्त्र ये नहीं बोलते हैं कि आप इतने भक्ति में तीव्र बन जाओ कि बीवी बच्चे सबको भूल जाओ, आप एक छोटे तुकाराम जैसे बन जाओ, ऐसे शास्त्र नहीं बोलते हैं। आप बन भी नहीं पाओगे आप ऐसे, ऐसा बनने की जरूरत नहीं, दोनों को बैलेंस करना है दोनों को। अगर हम घर के जिम्मेदारियों में, कभी कभी लोग, इंसान सोचता है कि हमारे पास 2 BHK घर है, अगर एक खुद का बंगला हो जाएगा उसके बाद हम भक्ति बढ़ा देंगे, मंदिर के पास ही ले लेंगे ये घर ले लेंगे, लेकिन वो खुद का बंगला लेने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए आजकल, तो वो पैसा कमाने में उसका 20 साल चला जाता है उसका, ऐसे तो लोग फंस जाते हैं इस तरह के आकांक्षाओं में। तो साधारणतः भौतिक दुनिया में रहने वाले लोगों के मन भौतिक जिम्मेदारियों की ओर ज़्यादा भागता है, आध्यात्मिक जीवन की ओर कम भागता है। बहुत कम लोग हैं जो इतना गंभीर बन गए कि वो भौतिक जिम्मेदारियों को भूल गया, ऐसे बहुत कम लोग हैं ऐसे। लेकिन भरत महाराज जी भी ऐसे ही जंगल में अपने भक्ति करते समय अचानक उन्होंने एक हिरण को देखा, सोचा कि अनुकंपा दिखाना दूसरे जीवों की ओर, ये साधारण मनुष्य का भी कर्तव्य है, वो तो ये छोटा मृग है मर जाएगा वो, उसको थोड़ा प्रेम दिखाना चाहिए, तो प्रेम दिखाया। लेकिन प्रेम दिखाते दिखाते क्या हो गया, जब माला करने के लिए बैठते थे तो हिरण आकर उनके गोद में बैठ जाता था। तो इस तरह हर एक व्यक्ति का अनुभव है, अगर कोई माला करने के लिए बैठता है तो बच्चे आकर बैठता है गोद में, नहीं तो पत्नी आकर कुछ लंबा लिस्ट देगी सामान खरीदने के लिए, नहीं तो पत्नी भी नहीं बच्चे भी नहीं तो मोबाइल कुड़ 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 आवाज करेगा, वो भी एक बच्चे के बराबर है, वो भी इस तरह। तो इस तरह हमारे भजन में बाधा डालने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। इसलिए एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए कि हम ऐसी साधना ऐसी समय में करें जिस समय में कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। जैसे अगर पुरुष हो तो सुबह जल्दी उठकर अगर माला कर लेते हैं तो उस समय सब लोग सोए रहते हैं, अच्छा हो जाता है माला। लेकिन सुबह दो माला किया, शाम के लिए 14 माला रखा 14 राउंड शाम के लिए, तो शाम के समय तो इतने फोन कॉल आते हैं, इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, एक माला आधा माला हुआ बीच में आ जाता है कोई बात करने के लिए। कभी कभी लोग ऐसे रखते हैं तो बाद में करने पड़ते हैं ऐसे हैं, तो ऐसे हैं। इस तरह करने से हमारा माला ठीक तरह से नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम ऐसे हमने कहानी सुना, ये जो एक बड़ा जार था ऐसे है, उस जार के अंदर अनेक चीज डालना था, उसमें मिट्टी भी डालना था और छोटे छोटे पत्थर डालने थे, इतना बड़ा पत्थर और बड़ा बड़ा पत्थर भी डालना था। तो एक व्यक्ति को लेके जाना था सब, उसने क्या किया, पहले मिट्टी डाला और मिट्टी के पहले छोटा पत्थर डाला, वो तो आधा भर गया, उसके बाद इतना बड़ा पत्थर डाला। तो बड़े बड़े पत्थरों के लिए समय नहीं था अंदर डालने के लिए, क्योंकि जगह ही नहीं था उधर डालने के लिए। इस तरह हमारे जीवन में बड़ा पत्थर क्या है, 16 माला पूरा करना आपको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा आपके लिए। रात को 12 भी बज जाए आपको ही करना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा पत्थर के बराबर है। और उसके बाद का पत्थर क्या है, जो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, वो दूसरा साइज का पत्थर है।